तो आज का दिन जैसा आप सबको पता है बहुत ही शुभ दिन है। आज रामनवमी है तो रामचंद्र जी का प्राकट्य दिन। हम लोग रामचंद्र जी का जन्मदिन ऐसा नहीं बोलते हैं, बोलने वाले बोल सकते हैं हैप्पी बर्थडे बोल सकते हैं, लेकिन भगवान का कभी जन्म नहीं होता है। भगवान अजय अजन्मा ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारण। ब्रह्मा जी कहते हैं कि कृष्ण परमेश्वर हैं और वो खुद अनादि हैं, अर्थात उनका कोई आदि नहीं है, लेकिन वो स्वयं सबके आदि हैं और सभी कारणों के कारण हैं। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारण, तो सभी कारणों के कारण है। तो सभी को पैदा करने वाले वो स्वयं है, जन्मादि से वेदांत सूत्रों में भी बताया है। भागवतम का जो पहला श्लोक है जो गायत्री मंत्र है वो भी ऐसी शुरुआत होती है। तो उन श्री कृष्ण के अनेक अवतार हैं। ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी कहते हैं अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूपम, भगवान के अनंत रूप है और ये सब रूप जो है भगवान के वो नित्य है, शाश्वत है। ऐसा नहीं कि कोई खास कोई नियत समय में वो रूप धारण करते, ऐसा नहीं है। भगवान के जितने भी अवतार हैं, जितने भी विस्तार हैं, जितने भी रूप हैं, वो सब शाश्वत हैं। और जिस प्रकार से समुद्र के तट पर जो मोजे अविरत रूप से आते जाते रहते हैं उसको वो गिन सकता है, समुद्र के तट पर मोजे आते हैं ना, उसको कोई नहीं गिन सकता। उसी प्रकार से भगवान के अनेक अनंत कोटि अवतार हैं जिसको कोई गिन नहीं सकता। तो भागवतम में पहले स्कंध में 24 अवतार को संक्षिप्त में वर्णन किया है और उसके बाद विस्तार से पूरे भागवत पुराण में 10 अवतारों का वर्णन किया है। एक्चुअली वो भी विस्तार से नहीं है, वो संक्षिप्त में ही है। तो क्या केवल भगवान के 24 अवतार हैं टोटली? ऐसा नहीं है, भगवान के अनगिनत अवतार है, अनगिनत विस्तार होंगे। भागवत में उसमें से मुख्य 24 और उसमें से भी मुख्य 10 अवतारों का वर्णन किया है, उसमें से एक रामचंद्र है। तो भगवान जो है वो स्वयं अजय है, अजन्मा है और उनके जो कार्यकलाप हैं और उनका जो प्राकट्य है या उनका तथाकथित जन्म जो है वो हमारे जैसा नहीं है। तो इस संसार में जो भी शिशु उत्पन्न होता है वो पुरुष और स्त्री के समागम के फलस्वरूप उत्पन्न होता है, लेकिन भगवान का प्राकट्य इस प्रकार से नहीं होता है। हालांकि भगवान प्रकट होते हैं एक पुरुष और स्त्री जो पति पत्नी है वो बाह्य रूप से उनसे जन्म लेते हुए दिखाई देते हैं, इसलिए भगवान का एक नाम कपट मानुष है। उनकी लीला जो है उनके कार्यकलाप मनुष्य जैसे दिखते हैं लेकिन वास्तव में वो मनुष्य नहीं है, इसलिए उनको कपट मानुष भी कहते हैं। और भगवान के जितने भी जन्म और कर्म है वो सब दिव्य है। गीता में श्रीहरि क्या कहते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं योगेति तत्वतः तत्वादेहं पुनर्जन्म नेति मामेति सोऽर्जुन। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मनुष्य जानता है कि मेरे जन्म और कर्म दिव्य है उसका इस संसार में पुनर्जन्म नहीं होता है, वो मेरे धाम में प्रवेश करता है, ये बात निश्चित है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम लोग भगवान के प्राकट्य और उनके कार्यकलाप को समझें, उसकी महत्ता को समझें, उनका अर्थ समझें। उनकी दिव्यता को समझने में हमारा स्वार्थ है, मनुष्य का स्वार्थ बहुत सारे पैसे कमाना या बहुत सारे प्रॉपर्टी का मालिक होना या बहुत उपभोग करना, उपभोग की सामग्री एकत्र करना, वो उसका उद्देश्य नहीं है। मनुष्य की परम स्वार्थ गति है विष्णु, इसलिए इस संसार में देखते हैं कि दुर्भाग्यवश लोग ये नहीं जानते हैं कि हमारी वास्तविक स्वार्थ गति क्या है। इसलिए भागवत ने बोला है ना तो विदुः स्वार्थ गतिं हि विष्णु। इस संसार में लोग नहीं जानते जानते हैं कि मनुष्य की वास्तविक स्वार्थ गति है विष्णु। ये हमारी वास्तविक स्वार्थ है, वास्तविक स्वार्थ है हमारा ये। तो इसको समझना बहुत जरूरी है। इसको समझे बिना पूरा मनुष्य जीवन विफल हो जाता है। जैसे आप जीरो कितने भी लगा लो, जीरो ऐड करते जाओ, जीरो के बाद जीरो, उसके बाद जीरो, उसके बाद जीरो, उसके बाद जीरो, उसके आगे जीरो, कितने भी लगा लो, उसका कोई मूल्य है? उसका कोई मूल्य नहीं है। लेकिन उसके आगे आप एक लगा दोगे तो वो जीरो की वैल्यू हो जाती है। उसी प्रकार से मनुष्य इस संसार में बहुत सारे बड़े बड़े काम यदि करता है, उसको लगता है कि मैं बहुत बड़े बड़े काम कर रहा हूं या मेरा जीवन बहुत ही अर्थदायक अर्थपूर्ण है, ऐसा वो समझता है। लेकिन यदि वो आत्मज्ञान प्राप्त नहीं करता है और अपना अपने जीवन में कभी भी वो साधु संग नहीं करता है, श्रीहरि की सेवा नहीं करता है, तो उसका मनुष्य जीवन विफल हो गया। उसने कितने भी बड़े काम क्यों ना किया, वो जीरो की तरह ऐड करते जाए, ऐड करते जाए, करोड़ों हॉस्पिटल बनवाए, करोड़ों अनाथालय बनवाए, करोड़ों फैक्ट्री बनाए, बहुत सारे टन का टन, थाउजेंड्स ऑफ टन माइनिंग करके आयन ओर निकाले, बहुत पैसा कमाए, सब जीरो है। यदि उसने भगवान की सेवा नहीं की है मनुष्य जीवन में, तो उसके सब काम बेकार है, विफल है। और उसने पूरा जीवन केवल विष का पान किया है। मनुष्य जन्म पाय राधा कृष्ण भजिया जानिया शून्या विष खाई। मनुष्य जीवन प्राप्त करते करके यदि राधा कृष्ण का भजन नहीं करते हैं तो उस मनुष्य ने जानबूझ के विष खाया है। ऐसा होता ना कि कोई लोग, कुछ लोग आत्महत्या कर लेते हैं, पोटेशियम साइनाइड या ऐसा कुछ भी खा लेते हैं। क्यों? जीवन त्रस्त हो गया है, फ्रस्ट्रेट हो गया है, आत्मघात, आत्मघात करता है वो, सुसाइड कर लेता है। वो सुसाइड से तो केवल शरीर नष्ट होगा, लेकिन राधा कृष्ण का भजन नहीं करने से, श्रीहरि की सेवा नहीं करने से, जो विष का पान करता है मनुष्य, वो उसको जन्म जन्मांतर में नर की अग्नि में झोंक देता है। क्योंकि वो श्रीहरि के भजन के बिना तो माया जैसे उसको इधर उधर, जैसे समुद्र के मोजे वो इधर उधर फेंका जाता है ना, कितना भी निपुण तैराक क्यों ना हो, स्विमर कुछ बहुत अच्छा तैरने की उनको स्किल होती है, निपुण होते हैं उसमें, लेकिन समुद्र में यदि कोई तैरने गिरता है तो कुछ दूरी तक जा सकता है, फिर वो आगे बढ़ेगा तो उसमें जो बड़े बड़े मोजे आते हैं और जो आंधी तूफान चलता है उसमें कोई तैराक टिक नहीं पाता है। उसी प्रकार से इस भव सागर में, ये भव सागर है, भव माने जन्म मृत्यु जरा व्याधि को भव कहते हैं, उसका ये सागर है। यहां बड़े बड़े निपुण लोग, बड़े बड़े योगी महर्षि यदि श्री हरि के शरणागति नहीं लेते हैं तो माया के मोजे में इधर उधर घूमते रहते हैं, कभी वो तट पे नहीं पहुंच पाते। तो फिर उनके बड़े बड़े योगियों की बात करें तो उनके लिए संभव नहीं है श्रीहरि के शरणागति के बिना, तो फिर हम जैसे साधारण मनुष्य तो क्या बात करें। तो इस संसार में हमें ये मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है, उसका मुख्य उद्देश्य है कि हमें अपनी वास्तविक स्वार्थ गति विष्णु को समझना है। यदि वो नहीं समझे तो पूरा जीवन विफल हो गया। इसी के लिए मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है, और तो उद्देश्य नहीं है। आहानिता भाई मैथुन तो हम दूसरे योनियों में बहुत बार कर चुके हैं। हाथी तो कितना टन कटन खाना खाता है ना। फिर कुछ प्राणी है जो 6 महीने सोते ही रहते हैं, जैसे वो नॉर्थ पोल में कुछ ऐसे होते हैं जो सोते ही रहते हैं, क्या बोलते हैं उसका नाम भूल गया मैं, ऐसे अलग प्राणी होते हैं। फिर भाई तो प्रोटेक्शन के लिए, भाई माने प्रोटेक्शन, तो शेर चीता उनके पास बहुत बढ़िया मैकेनिज्म, डिफेंस मैकेनिज्म है उनके शरीर में, उनके दांत, उनके क्लॉज। उसी प्रकार से कुछ प्राणी ऐसे भी मिलेंगे जो मैथुन में बहुत निपुण होते हैं। तो ये सब तो हम पहले बहुत बार कर चुके हैं, एक ही चीज को बार बार करने से फिर उसमें कोई रस प्राप्त नहीं होता। इसलिए जैसे आप लोगों ने देखा होगा, यदि कोई गन्ने का जूस बेचने वाली शॉप होती है तो उसमें जूस निकाल दिया पूरा गन्ने का, सुगर केन का, फिर वो बाहर वो रखता है उसका स्क्रैप। तो कई बार गाय आकर उसको उसमें से रस निकालने का प्रयत्न करती है ना। हम गुजरात में ये सीन देखते हैं, यहां तो पता नहीं ऐसा होता है, गुजरात में हम लोग देखते हैं। तो उसमें से कोई रस नहीं निकलने वाला है, क्योंकि कोई रस निकाला जा चुका है उसमें से। फिर वो उसको गाय ये आशा में है कि इसमें से कुछ रस प्राप्त होगा, वो उसको चबाती रहती है। इसको बोलते हैं पुनः पुनः चर्विता चर्विताणाम, जो चबाया हुआ है उसको और चबाए जा रहे हैं ये आशा में कि और इसमें से रस प्राप्त होगा। इसको तो इसको मूर्खता कहते हैं, ये मूर्खता। तो हम बहुत जीवन में अनेक बार जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र में फंसे हुए हैं, और अनेक बार हम भौतिक सुख भोग चुके हैं। सुख एक्चुअली है नहीं, लेकिन सुख की भ्रांति है वो, अनेक बार हम उसका अनुभव कर चुके हैं, उसको ऑलरेडी बहुत बार चबा चुके हैं। आहार निद्रा भय मैथुन, ये हम इसको बहुत बार चबा चुके हैं। फिर भी माया एक एक प्रकार का वो भ्रमणा ऐसी खड़ी करती है कि अरे इसमें आनंद है, आनंद भोग। जैसे रेगिस्तान में ऊंट चलते हैं, ऊंट की खुराक क्या होती है, ऊंट क्या खाते हैं, रेगिस्तान में क्या उगता है, रेगिस्तान में कॉलीफ्लावर की सब्जी उगती है क्या, या आपका वाटरमेलन या जैक फ्रूट, ये कोई उगता है क्या रेगिस्तान में, क्या उगता है रेगिस्तान में, कैक्टस, कैक्टस उगता है ना, पता नहीं हिंदी में उसको क्या बोलते हैं। तो ये ऊंट जो होता है वो कैक्टस खाता है, वही तो अवेलेबल है रेगिस्तान में, वही मिलता है। तो ऊंट कैक्टस खाता है, ये कांटेदार होता है, कांटे वाला होता है, इट इज थॉर्नी। तो क्या होता है कि उसके जो दांत के जो पेड़े होते हैं उसमें से खून निकलने लगता है। तो वो जो कैक्टस है वो उसके साथ उसका खून मिलता है, उसको खाता है, उसके पेट में जाता है, उसको लगता है कि ये जो रस है वो कैक्टस में से आ रहा है, लेकिन रस वास्तव में कहां से आया, उसका खुद का ही खून है। तो वही हालत हमारी इस भौतिक जगत में, यहां वास्तव में कोई रस नहीं है, कोई सुख नहीं है, लेकिन माया ने ऐसी भ्रमणा खड़ी की उसकी वजह से हमें लगता है कि यहां रस है, विषय में रस है। इसलिए गीता भगवान बोलते हैं मम माया दुरुच्चया, मेरी माया को प्राप्त करना बड़ा कठिन है, लेकिन जो मेरी पूर्ण शरणागति ले लेता है माया मिदम तरंतित है, वो इस माया को पार करके मेरे धाम में आ जाता है। इस उद्देश्य से भगवान के भक्तों ने, भगवान ने स्वयं अनेक बार आकर लीला की है, और भगवान ने अपने भक्तों को भेजा है, ऋषियों को भेजा है, उन्होंने अनेक सारे शास्त्र का निर्माण किया है। भगवान स्वयं इस उद्देश्य से कि जीवात्मा कैसे भी करके मुझसे आकर्षित हो इस भौतिक जगत में आते रहते हैं, इसी उद्देश्य से भगवान के अवतार होते हैं। यदा यदा ही धर्म से ग्लानि भवति भारत अभ्युत्थान धर्म से तदात्मान सुजाम्यहम् परित्राण साधुना विनाश दुष्कृताम धर्म संस्थापनाथाय संभवामि युगे युगे। हर युग में भगवान आते हैं, धर्म की ग्लानि होती है तब भगवान प्रकट होते हैं, धर्म की रक्षा के लिए, अपने भक्तों की रक्षा के लिए, और विनाश दुष्कृताम जो दुष्कृति है, नराधम है, उनको मारने के लिए भगवान इस प्रकार से प्रकट होते रहते हैं। तो उसी प्रकार से भगवान अनेक प्रकार की लीला करके ऐसे भटके हुए जीवात्माओं को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। हम लोगों को न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ना अच्छा लगता है ना, पेपर में भी कल क्या घटना घटी, कितने मर्डर हुए, कितने रेप हुए, कौन सी फैक्ट्री बंद हुई, कौन सी नहीं खुली, कौन किस कौन पॉलिटिशियन को मार दिया गया, ये सब न्यूज आते रहते, कौन फिल्म स्टार को अवार्ड मिला, कौन जेल में गया, संजय दत्त जेल में जा रहा है वापस, तो लोगों को ये सब न्यूज पढ़ने बड़ा रस आता है। तो लोगों को ये स्वाभाविक रूप से ऐसी रुचि रहती है कि कुछ पढ़ना चाहिए, कुछ सुनना चाहिए ना। टीवी पर या रेडियो पर वो क्रिकेट कमेंट्री सुनते हैं कान में लगा के, मोबाइल पे लोग बात करते रहते हैं, तो कुछ ना कुछ सुनना है लोगों को। वास्तव में जीवात्मा हमेशा अजानते, उसको नहीं पता है, वो हमेशा भगवान के गुणगान सुनना चाहता है, वो उसी की प्यास उसको लगी हुई है। जीवात्मा को भगवान के गुणगान सुनने की प्यास है, लेकिन माया के प्रभाव से वो समझ नहीं पाता है, और इसलिए वो रस जो हरि कथा में जो रस होता है वो दूसरे दूसरे विषय में ढूंढता रहता है। उसको पता नहीं है कि ऐसा हो रहा है। जब तक उसको साधु संग प्राप्त नहीं होता है तब तक उसको ये बात समझ में नहीं आती। तो भगवान ने बद्ध जीवात्मा, हम लोग सब यहां भौतिक जगत में फंसे हुए हैं, तो हमारे उद्धार के लिए ऐसे अनेक बार प्रकट होते हैं हर एक युग में। तो वैसे ही त्रेता युग में श्री हरि विष्णु रामचंद्र के रूप में प्रकट हुए। तो इनकी लीला आपको पता है कि बहुत प्रख्यात ग्रंथ है, इसका नाम है रामायण। रामायण किसने लिखा था? वाल्मीकि ने लिखा था। तो ओरिजिनली सबसे पहले रामलीला और रामायण जो है वो ब्रह्मा जी ने नारद को सुनाई, ये बात स्कंद पुराण बताई है। और ब्रह्मा जी ने ये रामलीला कितने श्लोकों में सुनाई, कोई अंदाजा लगा सकता है? किसी को पता है इसके बारे में? 100 करोड़ श्लोक। कितना? 100 करोड़। शतकोटि, कोटि माने करोड़, शतकोटि स्कंद पुराण में लिखा है। 100 करोड़ श्लोक में सबसे पहले ब्रह्मा जी ने रामायण नारद जी को सुनाई थी। नारद जी ने उसको संक्षेप से फिर किसको सुनाया? वाल्मीकि को सुनाया। और वाल्मीकि ने, हम छोटे मनुष्यों के लिए, छोटे लोग हैं हम लोग, ब्रह्मांड में हम बहुत छोटे छोटे हैं, हमारे लिए रामायण की रचना की जिसमें कितने श्लोक हैं? 24,000 श्लोक। और इन 24,000 श्लोकों में 7 कांड है जिसमें रामचंद्र की लीलाओं को बहुत ही सुंदर ढंग से वाल्मीकि ने उसका निरूपण किया है। तो वैसे रामचंद्र की लीला केवल वाल्मीकि रामायण में ही नहीं है, और ग्रंथों में भी है। जैसे महाभारत में वन पर्व में रामोपाख्यान पर्व आता है, उसमें भी रामलीला का वर्णन किया, वो संक्षेप में है। फिर एक बार युधिष्ठिर ने वेदव्यास को विनती की थी रामलीला सुनाने के लिए अलग से। उस समय वेदव्यास ने युधिष्ठिर आदि पांडवों को रामायण तात्पर्य दीपिका नामक ग्रंथ सुनाया था, जो आज नहीं मिलता है, रामायण तात्पर्य दीपिका। तो वेदव्यास का सुना हुआ रामायण था। वैसे रामायण की रचना तो वाल्मीकि ने की थी, लेकिन वेदव्यास ने भी उसको सुनाया था युधिष्ठिर को, तो वो सब तो मिलता नहीं। ऐसे बहुत ही रामचंद्र की लीला को प्रदर्शित करने वाले ऐसे अनेक ग्रंथ हैं। और रामचंद्र की लीला केवल भारत देश में ही प्रख्यात नहीं है। अंकोर वाट पता है आपको? अंकोर वाट कॉम्बोडिया, साउथ ईस्ट एशिया में कॉम्बोडिया नाम का एक कंट्री है। अंकोर वाट बहुत ही प्राचीन विष्णु मंदिर था, अभी तो पता नहीं क्या मेंटेन करते हैं वो लोग, लेकिन दुनिया में सबसे बड़ा विष्णु मंदिर है अंकोर वाट का, दुनिया का सबसे बड़ा विष्णु मंदिर, जो भारत देश में नहीं है। वो इसलिए क्योंकि उस समय भारत आर्य संस्कृति पूरी दुनिया में फैली हुई थी, तो धीरे धीरे फिर कलयुग में सब भारत देश की सीमा कश्मीर से कन्याकुमारी हो गई, लेकिन वास्तव में तो बहुत फैला हुआ था जर्मनी तक। हमने जो यजाति की कथा सुनाई थी उस दिन, तो कुछ हिस्टोरियंस मानते हैं कि यजाति उस क्षेत्र के, वो क्षेत्र में उनका कैपिटल हुआ करता था। आजकल जो जर्मनी है वो यजाति की राजधानी हुआ करती थी उस जमाने में, लाखों साल बीत गए। इंडो यूरोपियन स्टॉक, प्रभुपाद जी शब्द का उपयोग करते हैं, Yayati was the king of Indo-European stock. Indo-European, it roughly comes around Germany. इसलिए तो हिटलर का भी वो सिंबल था ना स्वस्तिक, आप लोगों को यदि पता है तो, वो अपने आप को आर्य मानता था। एनीवे, कहने का मतलब है ये भारतीय वैदिक संस्कृति पूरी दुनिया में फैली हुई थी पहले। उस कारण से देखेंगे आप मलेशिया जाइए, थाईलैंड जाइए, थाईलैंड में आज भी वो लोग रामलीला के ड्रामा करते हैं, स्टेज शो करते हैं, सो बहुत प्रख्यात है, केवल भारत देश में नहीं और भी दुनिया की और भी संस्कृतियों में भी। तो ऐसे उनकी लीला रामायण में, वाल्मीकि रामायण में बहुत विस्तार से बताई। तो वाल्मीकि की जो लिखने की शैली है वो बहुत सुंदर है, मैंने वाल्मीकि रामायण पढ़ा है उसके ओरिजिनल श्लोक के साथ, तो बहुत विस्तार से वाल्मीकि ने उसमें रामचंद्र की कथाएं लिखी हैं और बहुत ही काव्यमय ढंग से, बहुत ही काव्यमय। वाल्मीकि की जो लिखने की शैली है वो हृदय द्रवित करने वाली है। मैं खास करके सोचे, मैं अकेले ही बैठकर पढ़ रहा था तो वो सीन उसमें पढ़ रहा था मैं, जब व्हेन आई केम अक्रॉस दैट, जब रामचंद्र कई कई के आग्रह से 14 वर्ष के वनवास के लिए निकल जाते हैं, उस समय जो अयोध्या वासी जो विलाप करते हैं, रामचंद्र जब रथ पर सवार हो जाते हैं जाने के लिए, निकलने के लिए, तो उस समय अयोध्या वासी जो अपना आर्त प्रकट करते हैं, आर्त माने तीव्र दुख जो प्रकट करते हैं, उसका बहुत ही काव्यमय ढंग से वाल्मीकि वर्णन किया है। कोई व्यक्ति, कोई भी, जैसे पाषाण हृदय, जिसका हृदय यदि पत्थर का भी होगा, यदि वो, मतलब उसमें बताया वाल्मीकि ने कि क्या प्रेम था अयोध्या वासियों का श्री रामचंद्र के लिए। कोई पत्थरदिल आदमी यदि उसको पढ़ेगा तो उसके आंख में एक बार तो आंसू आ जाएंगे, इतना जबरदस्त वर्णन दिया उसने। आई कुडंट स्टॉप माई टीयर्स, पढ़ के मैं रोने लगा। मैं खुद बहुत पत्थरदिल का आदमी हूं, कठोर दिल का आदमी हूं, लेकिन पढ़ के मैं रोक नहीं पाया अपने आप को, इतना बढ़िया वर्णन किया वाल्मीकि ने। तो अयोध्या वासियों का ऐसा प्रेम था श्री रामचंद्र के लिए। तो अयोध्या वासी का जो प्रेम था वो दिव्य प्रेम था भगवान का, क्योंकि रामचंद्र के जो कार्यकलाप थे वो सब दिव्य थे। कुछ लोग रामचंद्र की निंदा करते हैं, कुछ ओवर स्मार्ट लोग बोले कि उन्होंने सीता मैया के साथ अन्याय किया, धोबी की बात सुन के, है ना, ये सब कुछ लोग उनकी आलोचना करते हैं। लेकिन वो मूर्ख लोग ऐसी आलोचना करते हैं, वो रामचंद्र को ठीक से जानते हैं। वो लोग सोचते हैं कि रामचंद्र एक भौतिक व्यक्ति थे, जैसे हम लोग साधारण लोग हैं, वैसे कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, वो बहुत बड़े मनुष्य, बहुत बड़े मनुष्य थे, बहुत बड़े राजा थे, बस इसी रूप में कुछ लोग उनको जानते हैं। लेकिन श्री रामचंद्र के जितने भी कार्य थे, वो उनकी लीला थी, सब दिव्य है। वो सुनने से हम जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र से मुक्त हो सकते हैं। इसी उद्देश्य से वाल्मीकि ने रामायण लिखा था। वास्तव में लव कुश को पढ़ाया था और लव कुश जाकर फिर रामचंद्र की सभा में उसको सुनाते हैं, तो बहुत सुंदर है वो, पढ़ने लायक है वाल्मीकि रामायण, आप लोगों को पढ़िएगा, हम अंत में बताएंगे। तो मैं आपको, और भगवान की ये सब लीलाओं का हमें श्रवण करना चाहिए, श्रवण करने योग्य जो विषय है वो भगवान की लीला है। दूसरे भौतिक ध्वनि सुनकर, ये जो कान है हमारे, ये कान में छेद है ना, छेद है ना, और ये तो बाहर, इसको कार्टिलेज बोलते हैं मेडिकल लैंग्वेज में, ये ना ही मसल है और ना ही हड्डी है ना, इसको कार्टिलेज बोलते हैं। इस कार्टिलेज के अंदर होल है दो, कान जिसको बोलते हैं, श्रवणेंद्रिय या कर्ण संस्कृत में। तो इन छिद्रों में यदि श्री हरि कथा का प्रवेश नहीं होता है तो ये जो छिद्र हैं वो सांप के बिल के समान है। भागवत ने बोला है कि इस छिद्र में यदि हरि कथा का प्रवेश नहीं होता है, हरि कथामृत का प्रवेश नहीं होता है, तो जैसे सर्प विषमय होता है, इस यदि हरि कथा का प्रवेश नहीं होगा तो क्या होगा? विषय का प्रवेश होगा। अलग अलग भोग्य विषय का हम श्रवण करेंगे, क्योंकि जीवात्मा के पास दो ही विकल्प है, या तो वो भगवान के बारे में श्रवण करें या तो फिर वो दुनिया में विषयों के बारे में श्रवण करें। दो ही तो विकल्प है उसके पास। तो हम हरि कथा का श्रवण नहीं करेंगे, हरि कथा अमृत इस क्षेत्र में प्रवेश नहीं करेगा, तो फिर सर्प प्रवेश करेंगे उसमें। कौन से सर्प? जहरीले सर्प। कौन से? विषय, विषय के रूप में। तो भगवान ने बोला कि तुम दो कान से श्रवण करो और केवल एक ही मुंह से बोलो। दो कान दिए भगवान ने, मुंह एक ही दिया है हमें मनुष्य को, इसलिए श्रवण अधिक करना चाहिए। तो भगवान की दिव्य लीलाओं का वर्णन अनेक शास्त्र में किया गया है। कोई माइकल हॉल ऐसा पैदा नहीं हुआ जो ऐसा क्लेम कर सकता है कि मैंने वेद व्यास विरचित या वाल्मीकि विरचित सभी शास्त्रों का भली भांति श्रवण कर लिया है, एक्सेप्ट जो प्राचीन समय में उग्र सभा, शिवडू गोस्वामी, ये सब जो श्रेणी के लोग थे उनकी बात अलग है। और भगवान के जो शुद्ध भक्त होते हैं, जो जिनके ऊपर भगवान की विशेष कृपा रहती है, वो लोग बहुश्रुत हो सकते हैं, बहुत सारे शास्त्र का उन्होंने श्रवण किया रहता है। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान ने हमारे ऊपर अनुकंपा करके, अनुग्रह करके इतने सारे शास्त्रों का निर्माण किया है जिसमें भगवान की लीलाओं का वर्णन है कि हम लोग उसको एक जीवन में पढ़ नहीं सकते। वो मेरा कहने का तात्पर्य है। इतने सारे, अनगिनत, कोई अंत नहीं उसका। इतने सारे रामायण देखिए, महाभारत देखिए, 18 पुराण है, फिर उसके आधार पर अनेक दूसरे भी हमारे वैष्णव आचार्य ने बहुत सारे ग्रंथ लिखे हैं, अनगिनत। हमारे संप्रदाय में गौड़ी वैष्णव में, दूसरे संप्रदाय में भी, रामाजु संप्रदाय में, निम्बार्क संप्रदाय में, बहुत सारे जिसमें भगवान की लीलाओं का वर्णन किया। हम सब लोग ये सब छोड़ के दुनिया में विषयों का श्रवण करते हैं, इसलिए जीवन में अनेक समस्याएं हैं और ये संसार चक्र चलता रहता है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि वो सब विषयों का संग कम से कम करना चाहिए। शरीर से संबंधित, शरीर को टिकाने के लिए जितना आवश्यक हो उतना ही सुनो, बाकी और उतना ही समय उसमें बिताओ कि शरीर को टिकाने के लिए जितना हमें विषयों का संग करना पड़ता है वो ही। लेकिन हमारे जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए? हरि कथा का श्रवण। तो नियमित रूप से भगवान की कथा का श्रवण करना चाहिए, वही मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है। तो एक छोटी सी लीला आपको मैं सुनाऊंगा। रामचंद्र की लीला वैसे अनंत है, उसका कोई और छोर नहीं है, अनेक लीलाएं भगवान की। वैसे ये सब लीला आपको थोड़ी बहुत तो पता ही होगी, लेकिन इन कथाओं में एक विशेष, भगवान की कथा में एक विशेष गुण यह है कि इसको आप कितने भी बार श्रवण करो इसमें शुष्कता नहीं आती। जैसे आप कोई मूवी यदि देख लेंगे, कोई पिक्चर देखेंगे तो कितनी बार देखेंगे? जैसे शोले मूवी आप कितनी बार देख सकते हैं? 10 बार 20 बार 50 बार 100 बार, उसके बाद क्या होगा? फ्रस्ट्रेशन आ जाएगा, अरे बहुत हो गया, बस अभी कुछ नया लाओ। अभी तो आजकल के मूवी तो लोग एक बार एक भी पूरा नहीं देख पाते। एनीवे, सब शुष्क विषय है। कितनी भी आप उसको जितना ज्यादा उसको फिर देखते जाओगे, पढ़ते जाओगे, सुनते जाओगे, फिर उसमें बस नहीं चाहिए, इसमें का आनंद प्राप्त नहीं होता, रस प्राप्त नहीं होता। लेकिन भगवान की लीला ऐसी नहीं है। भगवान की लीला ऐसी है कि आप जितना भी श्रवण करते जाओ, पढ़ते जाओ, उसमें नवीन रस प्राप्त होता जाता है। तो वो, क्योंकि वो अमृत है, भगवान की कथा अमृत है, उसमें नित्य नया नया रस प्राप्त होता है। तो जब राम लक्ष्मण, आपको पता है कि दशरथ महाराज के 4 पुत्र थे, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। तो राम और लक्ष्मण एक दूसरे से बहुत ज्यादा आसक्त थे, उसी प्रकार से भरत और शत्रुघ्न, वैसे चारों भाइयों में बहुत प्रेम था लेकिन विशेष तौर से इस प्रकार से था। तो इनका जब शिक्षण पूरा हुआ, ये राजा के पुत्र हैं तो उनको क्षत्रियोचित शिक्षण प्रदान किया गया कि राजनीति सिखाई गई, शासन कैसे करना है, युद्ध कैसे करना है इत्यादि, उनका शिक्षण समाप्त हो गया। उस समय वो रामचंद्र 16 साल के थे, तो उनका शिक्षण समाप्त होने के बाद दशरथ महाराज उनके पुरोहित, दशरथ महाराज के पुरोहित कौन थे? वशिष्ठ। वशिष्ठ के साथ बैठे हुए थे अपनी सभा में, तो अपने चारों पुत्रों के विवाह के बारे में प्रश्नोत्तरी की, प्रश्न किया वशिष्ठ मुनि से। तो ये वार्तालाप चल ही रहा था कि अचानक वहां से वहां विश्वामित्र पधारे। तो विश्वामित्र के आगमन का समाचार सुनकर दशरथ महाराज और वशिष्ठ अपने अपने आसन से खड़े हो गए और उनकी अगवानी करने के लिए गए। विश्वामित्र को अपने महल में लेकर आए, अपने सभा में लेकर आए दशरथ महाराज, उनका भलीभांति पूजन किया और कुशल मंगल पूछा। दशरथ महाराज ने उनसे पूछा कि क्या जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र से मुक्त होने का आपके जो आपका पुरुषार्थ वो ठीक चल रहा है ना? जब साधु एक दूसरे को मिलते हैं तो इस प्रकार से प्रश्नोत्तरी करते हैं। साधु एक दूसरे को मिलते हैं तो यार धंधा ठीक से चल रहा है ना, ऐसा नहीं पूछते हैं। वो लोग पूछ रहे हैं कि तुम्हारा इस भव सागर से मुक्त होने का प्रयत्न कैसे चल रहा है, बिकॉज अल्टीमेटली दैट्स व्हाट मैटर्स, वो ही जीवन का परम लक्ष्य। तो दशरथ महाराज ने कुशल समाचार पूछा विश्वामित्र से, उनकी बहुत मीठे शब्द बोले, क्योंकि जब अतिथि घर पे आता है तो उसको बैठने के लिए आसन देना चाहिए, सबसे पहले उसको पीने के लिए जल देना चाहिए, मीठे शब्द कहने चाहिए, उसको प्रसाद देना चाहिए इत्यादि। तो दशरथ महाराज ने बहुत मीठे शब्दों में उनकी स्तुति की और कहा विश्वामित्र से कि आपके आगमन से मुझे ऐसा लग रहा है जैसे बहुत समय से कहीं सूखा पड़ा और फिर अचानक बारिश हुई, इस प्रकार से आपका आगमन यहां सुखद लग रहा है, या तो फिर किसी संतान इनको संतान प्राप्त हो गई। तो ऐसे बहुत ही मधुर वाणी में विश्वामित्र की उन्होंने स्तुति की और पूछा कि बताइए किस उद्देश्य से यहां आपका आगमन हुआ है, ताकि मैं जल्द से जल्द आपका वो कार्य पूर्ण कर सकूं, आपकी इच्छा पूर्ण कर सकूं। तो विश्वामित्र दशरथ महाराज के इस हॉस्पिटैलिटी, इस सत्कार से बहुत प्रसन्न हुए और बताया कि दशरथ मैं एक बहुत महत्वपूर्ण यज्ञ कर रहा हूं जो समाप्त होने की तैयारी में था, लेकिन वहां मारिच और सुबाहु नाम के दो राक्षस ने आकर उसमें मांस रक्त पेशाब इत्यादि करके उसको मलिन कर दिया, और ये बार बार करते हैं ये काम। तो उनको सबक सिखाने के लिए, उनसे मुक्ति पाने के लिए मैं तुमसे केवल 10 दिन के लिए राम मांगता हूं, तुम्हारा बड़ा बेटा। तो ये सुनकर दशरथ महाराज बहुत भयभीत हो गए, जैसे उनको उनके ऊपर बिजली गिरी, इस प्रकार से दशरथ महाराज को आघात लगा। वो कहने लगे विश्वामित्र से कि महाराज अभी मेरा बच्चा केवल 16 साल का है, इसने अभी तक कोई उसका सैन्य शिक्षण भी अभी तक समाप्त नहीं हुआ है, तो ये इतने बड़े राक्षस को मारने में समर्थ नहीं है, यदि आप बोले हैं तो मैं स्वयं अपनी सेना के साथ चलूं और आपका कार्य सिद्ध कर देंगे। लेकिन पहले ये तो बताइए कि ये जो दो राक्षस आपने बताए मारिच और सुबाहु, वो किस मतलब किसके सेवक हैं, किसके अध्यक्षता में ये कार्य करते हैं? तो विश्वामित्र ने बताया कि ये रावण के सेवक हैं। रावण जब कोई यज्ञ में यज्ञ को विध्वंस करने के लिए नहीं जाता है तो मारिच और सुबाहु को भेज देता है। तो ये सुनकर दशरथ महाराज और विक्षिप्त हो गए और भयभीत हो गए, बोले रावण से तो मैं भी पंगा नहीं ले सकता, रावण से मैं युद्ध नहीं कर सकता, मेरे बच्चे भी युद्ध नहीं कर सकते। फिर उनको रामचंद्र के वियोग होने की आशंका से उनको मूर्छा आ गई, मूर्छित हो गए। दो घड़ी के बाद वापस जा गए और फिर वापस वो विचार आया कि रामचंद्र से वियोग हो जाएगा, वापस मूर्छित हो गए। मूर्छा पे मूर्छा आने लगी उनको, एक घंटे तक मूर्छित अवस्था में रहे अशोक महाराज। फिर कुछ उनको होश आया, फिर वो विलाप करने लगे वापस और विश्वामित्र से विनती करने लगे कि मेरा बच्चा बहुत छोटा है। तो बौखला गए थे तो सब विवेक खो बैठे। तो ये दशरथ महाराज का अपने बेटे के लिए प्रेम है, दशरथ महाराज की ये जो उनका जो व्यवहार है, उनका उनकी जो वर्तणूक है वो भौतिक रूप से नहीं लेना चाहिए। दशरथ महाराज कोई इस भौतिक संसार का साधारण मन भौतिक बात नहीं था जो अपने बेटे के लिए इस प्रकार से विलाप करता था, नहीं, वो उनका प्रेम था ये रामचंद्र के लिए, वात्सल्य अवस्था ही। लेकिन पहले वचन दे चुके थे कि आपका जो भी कार्य होगा मैं पूरा करूंगा। तो जब दशरथ महाराज ने ठुकरा दिया, ये ठुकरा दी बात उनकी ये विनती विश्वामित्र के लिए, तो विश्वामित्र बहुत क्रोधित हो गए। विश्वामित्र का टेम्परामेंट थोड़ा हाई रहता है, वशिष्ठ बहुत कूल है, वशिष्ठ शांत रहते हैं, लेकिन विश्वामित्र अपने क्रोध के लिए प्रख्यात है। विश्वामित्र और दुर्वासा ये दो प्रख्यात है अपने क्रोध के लिए। तो दशरथ से बोले कि क्रोधित हो गए एकदम और उच्च स्वर से बोले लगे कि दशरथ तुम पहले ही वचन दे चुके हो कि मेरा जो भी कार्य होगा तुम उसको पूर्ण करोगे और तुम रघुवंशी हो। तुम किसी आप पहली बार मैंने आज देखा कि रघुवंशियों ने किसी ब्राह्मण को ना बोला है, आज तक रघुवंशियों के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ। तुम पहले ऐसे राजा हो जो ब्राह्मण को ना बोल रहा है, ब्राह्मण को कभी रघुवंशी आज तक ना नहीं बोला। तो उनके इस प्रकार से क्रोधित होने लगे तो उनके भय से धरती ध्रुजने लगी, धरती में कंपन हो गया। यहां तक कि स्वर्गलोक में भी चहल पहल मच गई, इंद्र का आसन डोलने लगा, सब देवता लोग डर गए क्योंकि विश्वामित्र का प्रकोप ऐसा ही था। विश्वामित्र ऐसे व्यक्ति थे, जब देवराज इंद्र ने मेनका को बोला कि तुम जरा विश्वामित्र को जरा गिरा कर के तो आओ, थोड़ा उसको ठिकाने लगा दो, तो मेनका बहुत डरती थी। मेनका ने उस समय ही बोला कि महाराज आप क्या बोल रहे हैं, आप उन विश्वामित्र की बात कर रहे हैं, उनको गुमराह करने की बात कर रहे हैं जिसने त्रिशंकु के लिए दूसरे स्वर्ग का निर्माण कर दिया था। ये कथा आपको पता है, रामायण में महाभारत में दोनों में बताई ये कथा। त्रिशंकु ने विश्वामित्र की शरण ली थी, वो स्वर्ग में जाने के योग्य नहीं था एक्चुअली, वो स्वर्ग से उसको गिराया गया था। तो विश्वामित्र की शरण ली उसने, बोले मुझे स्वर्ग से गिराया गया, मुझे प्रवेश नहीं है, आपकी शरण में आया हूं। विश्वामित्र ने इंद्र से बातचीत की, इंद्र ने मना कर दिया। विश्वामित्र बोले मैं त्रिशंकु के लिए एक अलग स्वर्ग का निर्माण करूंगा, कर दिया था। विश्वामित्र इतने भयानक थे, इतने तपस्वी, इतना तेज था इनका, तो सब लोग डरते थे उनसे। तो जब विश्वामित्र इस प्रकार से कुपित हो गए तो सब जगह चहल पहल मच गई, सब कांपने लगे। तो इस स्थिति की गंभीरता देखकर वशिष्ठ अपना दिमाग अपना हमेशा ठंडा रखते थे। वशिष्ठ गए, स्थिति की गंभीरता को देखकर दशरथ महाराज के पास गए, उनके कान में बातचीत करने लगे, विस्परिंग करने लगे कान में उनके कि महाराज आप अपने बेटे की ओर से कोई आशंका मत करिए, यह विश्वामित्र बहुत शक्तिशाली है। जब ये राजा थे तो उन्होंने शिव जी को प्रसन्न करके दक्ष प्रजापति की दो बेटी जया और सुप्रभा के जो अस्त्र शस्त्र थे वो प्राप्त किए थे। दक्ष प्रजापति की दो बेटी थी जया और सुप्रभा, उन्होंने पुत्र के रूप में अस्त्र शस्त्र पैदा किए थे। तो अस्त्र भी दो प्रकार के होते हैं, एक अस्त्र तो जड़ पदार्थ जैसे ऑर्डिनरी, जैसे बुलेट गन या धनुष बाण, ऑर्डिनरी बाण जो होता है, शाफ्ट होता है, शाफ्ट के आगे वो पॉइंटेड वो लगा दिया, आयरन का बना हुआ या स्टील का बना हुआ, वो ऑर्डिनरी शस्त्र हुआ। दूसरे शस्त्र जीवंत होते हैं, व्यक्ति होते हैं, जैसे सुदर्शन चक्र, जैसे पाशुपतास्त्र, इस प्रकार के ऐसे बहुत सारे ऐसे और भी शस्त्र हैं। तो जया सुप्रभा नाम की दो दक्ष कन्या थी, तो उन्होंने ऐसे अस्त्र शस्त्र को जन्म दिया था। तो विश्वामित्र जब राजा थे, वास्तव में विश्वामित्र क्षत्रिय थे पहले जन्म से, लेकिन वशिष्ठ से होड़ होने की वजह से उन्होंने तपस्या करके ब्रह्मर्षि पद प्राप्त किया था। यही वशिष्ठ जो दशरथ की सभा में उनके पुरोहित थे, उन्हीं के साथ उनका होड़ था, कॉम्पिटिशन थी, स्पर्धा थी। वो कथा महाभारत में बहुत डिटेल में बताई है, बहुत विस्तार से, क्या जबरदस्त दोनों के बीच में। वैसे वशिष्ठ का कोई द्वेष नहीं था विश्वामित्र से, लेकिन नंदिनी कामधेनु को लेकर विश्वामित्र ने उनके साथ स्पर्धा कर ली थी। फिर धीरे धीरे वो ब्रह्मर्षि बन गए थे, वशिष्ठ के लेवल पर आ गए। फिर तो विश्वामित्र ने वशिष्ठ से भी द्वेष छोड़ दिया था, क्योंकि जब तक द्वेष से मुक्त नहीं होते तब तक उस पद पर कोई आ नहीं सकता है। तो वशिष्ठ बोल रहे हैं कि इनके पराक्रम में जानता हूं, दशरथ को बोल रहे हैं, दशरथ को समझा रहे हैं कि विश्वामित्र के पराक्रम को मैं अच्छी तरह से जानता हूं, इन्होंने ऐसे अस्त्र शस्त्र प्राप्त किए श्री जी को प्रसन्न करके, तो वो रामचंद्र को प्रदान करेंगे, तो तुम्हें रामचंद्र के जीवन को लेकर कोई आशंका करने की आवश्यकता नहीं है, उनको कुछ नहीं होगा। हकीकत तो यह है कि विश्वामित्र स्वयं इन दोनों राक्षसों को समाप्त कर सकते हैं, लेकिन वो रामचंद्र को ले जाकर उनके द्वारा कार्य करा के उनका और आपके वंश का गौरव बढ़ाना चाहते हैं। तो आप आशंका मत करिए, आप जाने दीजिए। तो ये बात सुनकर दशरथ महाराज को थोड़ा सा कलेजे में थोड़ी ठंडक पहुंची, आशंका कम हुई, उनका दिमाग में उत्पात कम हुआ, कंपोज हो गए और बोले ठीक है, तैयार हो गए। तो सेवक को बुला के रामचंद्र को बुलाया सभा में। रामचंद्र जहां जहां जाते थे परछाई की तरह लक्ष्मण जाते थे। विश्वामित्र ने तो लक्ष्मण को तो नहीं बुलाया था, राम को बुलाया था, क्योंकि विश्वामित्र जानते थे वो तो परछाई होता आएगा ही, अपने आप आएगा, वो तो नहीं बुलाऊंगा तो भी। तो रामचंद्र आए सभा में, पीछे पीछे लक्ष्मण जी आए पधारे। तो विश्वामित्र के चरणों में प्रणाम किया, निवेदन किया, दशरथ महाराज को प्रणाम किया, और फिर दशरथ महाराज ने अपना दाहिना हाथ रामचंद्र के और लक्ष्मण के हाथ पे रख के सर पे रख के उनको विश्वामित्र के साथ जाने की आज्ञा दे दी। तो निकल गए वो लोग, रामचंद्र, लक्ष्मण और विश्वामित्र। तो अयोध्या में सरयू नदी बहती है। अयोध्या गए आप लोग? आपने से कोई अयोध्या गया? सरयू नदी बहती है वहां, यस। तो इस सरयू के तट पे चल रहे थे तीनों, तो 12 माइल की दूरी पर पहुंचे और संध्या का समय हो रहा था। उस समय विश्वामित्र ने बोला कि चलो रामचंद्र दोगड़ी यहां ठहरो, मुझे तुम्हें कुछ देना है। तो उन्होंने बोला कि तुम थोड़ा आचमन इत्यादि करके शुद्ध हो जाओ, रामचंद्र को बोला। रामचंद्र ने शुद्ध हो गए और फिर विश्वामित्र ने उनको बला और अतिबला, बल अतिबल, बल और अतिबल नाम के दो मंत्र विद्या सिखाई। विश्वामित्र ने बोला कि इस विद्या को पाकर तुम बुढ़ापे से मुक्त हो जाओगे, तुम्हें कभी बुढ़ापा स्पर्श नहीं करेगा। कितनी अच्छी बात है नहीं, क्योंकि बुढ़ापा बड़ा बड़ा भयंकर होता है। यदि कोई उसमें बताया, अनेक शास्त्र में महाभारत में बताया कि ये वृद्धावस्था के लिए संस्कृत में बोलते हैं जरा, और यमराज की सभा में ये जरा मूर्तिमान होकर खड़ी रहती है। यमराज की सभा जो है उसमें जरा भी बहुत सारे रोग हैं, वो सब मूर्तिमान होकर खड़े रहते हैं, और जो जो अलग अलग प्रकार के पाप करते हैं यमराज उन रोगों को बोलते हैं कि उनके शरीर में घुस जाओ। तो जैमिनी बहुत सुंदर वर्णन करते हैं अपने महाभारत में इसके बारे में। तो वहां बताया कि जरा भी खड़ी रहती है वहां। ये जरा एक ऐसी स्त्री है जो सभी को आलिंगन करती है, वो पुरुष है, स्त्री है, कोई कोई प्राणी है, समय आने पर सभी को वृद्धावस्था आती है ना। और यजाति को तो धर पूछ लिया था शुक्राचार्य के शाप से, यजाति घबराया करते वृद्धावस्था से। तो वृद्धावस्था बड़ी भयंकर होती है, तो ये बहुत बड़ा एक भौतिक रूप से ये वर्ण। तो विश्वामित्र ने बोला कि इस विद्या को पाकर तुम्हें कभी बुढ़ापा नहीं आएगा, और तुम बहुत शक्तिशाली हो जाओगे, तुम्हें कभी थकान नहीं लगेगी। तुम कितना भी परिश्रम कर लो, तुम्हें कभी थकान नहीं लग सकती। तो रामचंद्र ने उसको स्वीकार किया, उसको पाके रामचंद्र जैसे हजारों सूर्य की तरह दैदीप्यमान होने लगे। विश्वामित्र बोले कि वैसे ये सब गुण तुम्हारे में ऑलरेडी है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें दे रहा हूं बल और अति बल, ये मंत्र विद्या। क्योंकि रामचंद्र का शरीर भौतिक नहीं था, वो तो भगवान स्वयं है, तो उनको तो वैसे भी कभी बुढ़ापा, कभी रामचंद्र या कृष्ण का कभी पिक्चर देखा तो बूढ़े हो गए, दाढ़ी बढ़ गई है, कभी नहीं। तो वो मंत्र विद्या पाकर रामचंद्र हजारों सूर्य की तरह दैदीप्यमान होने लगे। फिर वो विद्या प्राप्त कर ली, फिर संध्या का समय सूर्यास्त हो गया। विश्वामित्र ने बोला कि आज की रात यही ठहरेंगे सरयू के तट पे। तो वो जो प्रदेश था उसके बारे में कौतूहल हुआ रामचंद्र को, और उसके बारे में पूछा कि इस जगह की क्या क्या महत्ता है, मतलब इसका इसके साथ कोई जुड़ी कोई कथा है, विश्वामित्र से पूछा। तो विश्वामित्र ने बताया कि जब कामदेव एक बार शिव जी को विक्षिप्त करने के लिए गया, उनको बहुत बड़ी कथा है वो भी अपने आप में, क्योंकि देवता लोगों को एक सेनापति चाहिए था। वो सेनापति को प्राप्त करने के लिए शिव जी समाधि में बैठे थे, तो उनको समाधि से जगाने की जरूरत थी, तो पार्वती को लगाया गया कि पार्वती जाकर उनकी इंद्रियों को एजिटेट करो, उनको डिस्टर्ब करो, ताकि वो जग जाए और तुम वो तुम्हारा सेवन करे, ताकि तुम्हारे समागम से पुत्र उत्पन्न हो जो देवताओं का सेनापति होगा। तो उस कार्य में सहायता करने के लिए कामदेव गए थे। तो उस समय शिव जी बहुत क्रोधित हो गए थे, उन्होंने अपना तीसरा नेत्र कुछ ही खोला और उसे जो कामदेव थे वो जल गए थे। तो उस वजह से उनके जो अंग है वो गल गए थे, जल गए थे, इसलिए कामदेव का एक नाम है अनंग, अनअंग, वो अंग रही थे। तो वो बोले वो घटना जब कामदेव भाग रहा था तो वो इसी प्रदेश से भागा था, वो तो ये बात सुनाई। फिर दूसरे दिन सुबह रात उन्होंने वहीं बिताई। फिर दूसरे दिन सुबह वापस उन्होंने अपने संध्योपासना इत्यादि करके, सुबह का अपना जो प्रातः कर्म इत्यादि करके स्नान करके वो आगे बढ़े। वो आए गंगा के तट पे, तो वो गंगा के उस पार जाना था जहां वन था, वो जहां विश्वामित्र यज्ञ कर रहे थे। तो बीच नदी में पहुंचे तो वहां बहुत ही जोर का रामचंद्र ने जलप्रपात सुना। जलप्रपात माने बहुत जोर से ध्वनि आ रही थी, आवाज आ रही थी अंदर, लेकिन उस ध्वनि आने का कुछ कारण नहीं पता चल रहा था। वो क्यों आवाज क्यों आ रही थी पानी में, क्योंकि ऊपर से जल शांत दिख रहा था, उसका कारण पता नहीं चल रहा था। तो उन्होंने पूछा, रामचंद्र ने विश्वामित्र से पूछा, तो विश्वामित्र ने बोला कि एक बार ब्रह्मा जी ने अपने मन से एक सरोवर का निर्माण किया था, उसका नाम आप सबको पता है, उसका नाम मानस सरोवर, मान सरोवर, जो कहां है, हिमालय में। मानसरोवर हिमालय में है ना कि नहीं, मानसरोवर हिमालय में है, और उसी सरोवर से सरयू नदी उत्पन्न हुई। तो सरयू नदी उस मानसरोवर से निकल के गंगा के साथ यहां अंडर नीचे की तरफ उसका करंट है, तो दोनों का संगम होता है, गंगा जी का और सरयू का नीचे संगम होता है, उस कारण से यहां जलप्रपात का निर्माण हो रहा है, उसकी वजह से तुम्हें आवाज सुनाई दे रही है। तो फिर वो आगे बढ़े, दूसरे तट पे पहुंचे। तो वो जो वन था तट पे, जो वन था उन्होंने देखा, तो रामचंद्र ने देखा कि बड़ा भयानक प्रदेश था वो। रामचंद्र विश्वामित्र से बोले कि इस वन को देखकर तो कोई भी डर जाएगा, ऐसा भयानक वन है ये, तो ऐसा क्यों है, तो इसकी कथा सुनाई। तो विश्वामित्र बता रहे हैं कि ये प्रदेश कभी बहुत वैभवशाली हुआ करता और इसका नाम था मदद और करुष, इस प्रदेश का नाम हुआ करता था, है ना? सही बताया ना, मदद और करुष नाम का प्रदेश था ही। तो क्या हुआ था कि एक बार देवराज इंद्र ने वृत्रासुर का वध किया था। तो वृत्रासुर का वध इंद्र ने थोड़ा छल से किया था, उस कारण से, और वृत्रासुर वैष्णव भी था, उस कारण से देवराज इंद्र को बहुत बड़ा पाप लगा, ब्रह्म हत्या के तुल्य पाप लगा इंद्र को। तो उसकी वजह से इंद्र का तेज क्षीण हो गया। तो सब देवताओं ने मिलके गंगा के जल को अभिमंत्रित करके उनको स्नान कराया, अभिषेक कराया किया उनका, और उस ऐसे फिर उनका जो पाप था वो उसे पाप से मुक्त हो गए। तो उस समय ही वो जो जल था, जो स्नान जो इंद्र को कराया था, वो जल में तो पाप था ना, ब्रह्म हत्या का पाप था उसमें। तो फिर विश्वामित्र बोल रहे हैं कि वो जो जल था वो देवताओं ने इस जगह को के ऊपर डिस्पोज किया, वहां डाला, उस जल को यहां डाला देवताओं ने, और धरती ने उसको स्वीकार किया। उस कारण से देवराज इंद्र इससे बहुत प्रसन्न हुए धरती से, और बताया कि ये जो तुम्हारा प्रदेश है मलद और करुष, ये बहुत वैभवशाली राज्य होगा, यहां यहां बिना जोते ही अन्न उग जाएगा, सब लोग वैभवशाली होंगे इत्यादि, बहुत सारे वाल्मीकि रामायण विस्तार से बताया कि क्या प्रदेश था वो, हुआ करता था उस जमाने में। फिर क्या हुआ कि एक बार एक सुकेतु नाम का एक यक्ष था, तो उस यक्ष ने ब्रह्मा जी की आराधना की, तो ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर, और ये सुकेतु पुत्रहीन था, तो ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए सुकेतु से, यक्ष से, और बोला कि तुम वर मांगो। तो सुकेतु ने पुत्र मांगा, ब्रह्मा जी बोले तुम्हारे प्रारब्ध में नहीं है पुत्र, लेकिन मैं तुम्हें एक अति शक्तिशाली कन्या देता हूं, यक्ष कन्या। तो विश्वामित्र ने ब्रह्मा जी ने वो सुकेतु को एक कन्या दी, जिसका नाम हुआ ताटका, वो कन्या थी ताटका, वो वास्तव में यक्ष कन्या थी, बहुत सुंदर थी, और उसका विवाह समय आने पर हुआ जंब के पुत्र सुंद के साथ। ये सुंदर उपसुंद की कथा महाभारत में आती है, सभापर्व में नारद मुनि युधिष्ठिर आदि को सुनाते हैं, और ब्रह्मा जी ने तिलोत्तमा नाम की अप्सरा को ये सुंदर उपसुंद को मारने के लिए पैदा किया, वो बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो वो जंब के पुत्र सुंद के साथ ताटका का विवाह हुआ। अभी क्या हुआ कि एक बार अगस्त्य ने किसी अपराध से सुंद को मृत्यु का शाप दिया, तो इसकी वजह से ताटका और उसका बेटा कौन मारीच को बड़ा क्रोध आ गया, तो अपने पति को जो शाप मिला उसका बदला लेने के लिए वो गए अगस्त्य के आश्रम में, और फिर उनको मारने का प्रयत्न किया अगस्त्य को। तो उस समय अगस्त्य ने उनको शाप दे दिया दोनों को, ताटका को राक्षसी बनने का शाप और मारीच को राक्षस बनने का शाप दे दिया। और विश्वामित्र डराए बता रहे हैं कि तब से वो ताटका जो है यहां सबको पीड़ित करती है, और ये पूरा जो क्षेत्र है, ये पूरा राज्य समाप्त हो गया, वहां यहां से लोगों को भगा दिया, सबको पीड़ा देती है, ब्राह्मण को मार के भगा दिया, उनके यज्ञ नहीं होने देती है, तो पूरा उजड़ हो गया, वो सब उजड़ गया, सब वैरान हो गया पूरा क्षेत्र, और बड़ा भयानक वन हो गया है, क्योंकि वही निवास करते हैं यहां। तो विश्वामित्र कह रहे हैं कि तुम्हें ताटका का वध करना है, तो ताटका स्त्री है ऐसा समझ के तुम उसको छोड़ मत देना, और अपने वो पॉइंट को उसको बल प्रदान करने के लिए विश्वामित्र ने भूतकाल के उदाहरण लिए कि एक बार विरोचना की पुत्री ने पूरी पृथ्वी को खत्म करने का की ठान ली थी, तो उस समय इंद्र ने उसको आकर उसको मार डाला था। फिर एक बार क्या हुआ कि भृगु की पत्नी इंद्र को मारना चाहती थी, उस समय विष्णु ने आकर भृगु पत्नी को मारा था, क्योंकि शास्त्र में ऐसा बताया है कि कभी स्त्री की हत्या नहीं करनी चाहिए, स्त्री को कभी कड़ा दंड नहीं देना चाहिए, तीव्र दंड नहीं देना चाहिए, स्त्री की हत्या नहीं करनी चाहिए। जो बहुत ही शक्तिशाली योद्धा, जो अपने आपको योद्धा क्षत्रिय मानते हैं, वो कभी स्त्री के ऊपर हाथ नहीं उठाते। तो विश्वामित्र ये आशंका थी कि रामचंद्र भी ये राक्षसी स्त्री है तो फिर उसके ऊपर अपने शस्त्र का प्रयोग नहीं करेंगे। इस आशंका से कह रहे कि तुम्हें करना चाहिए क्योंकि पहले तुम खुद कर चुके हो विष्णु के रूप में, जब तुमने ही मारा था द्रौपदी की पत्नी को, तो उसको देखकर तुम दया मत करना उसके ऊपर। थोड़ा समय हुआ वो प्रतीक्षा करने लगे, राम लक्ष्मण और विश्वामित्र ताड़का के आने की प्रतीक्षा करने लगे। ताड़का आई, उसका जब समय आया और उसने आते ही सबसे पहले धूल उड़ा दी, उसने देखा कि यहाँ कोई मनुष्य आया है उनको भगाने के लिए और उनका अहित करने के लिए, वो धूल बहुत सारी धूल उड़ाई वहां। तो फिर रामचंद्र ने अपना कुछ शस्त्र का प्रयोग करके सब धूल भूस को सब खत्म कर दिया। फिर रामचंद्र स्पष्ट ताड़का को देखने लगे, ताड़का रामचंद्र को देखने लगी और फिर उसके बाद ताड़का ने पत्थरों की बारिश करना शुरू कर दिया क्योंकि राक्षस लोग तो ऐसे युद्ध करते हैं, बड़े बड़े पत्थर फेंकने लगी। तो ये देखकर विश्वामित्र ने बोला कि तुम अभी अपना काम करो, इसको खत्म कर डालो। तो रामचंद्र लक्ष्मण को देखकर बोल रहे हैं कि लक्ष्मण ये इस स्त्री को मारने की इच्छा नहीं हो रही है, ये राक्षसी है स्त्री है, तो मैं सोच रहा हूं कि इसकी दोनों भुजाएं काट दें और इसके कान और नाक काट के उसको यहां से रवाना करते, बस भाग जाएगी, मारने की क्या जरूरत है, ऐसे लक्ष्मण के साथ बातचीत कर रहे हैं। लेकिन ये बहुत जोर जोर से प्रहार करने लगी ताड़का और विश्वामित्र देख रहे हैं कि रामचंद्र खेल रहे हैं उसके साथ, आई मीन उसको मान नहीं रहे। तो पहले रामचंद्र उसकी जब उसने वो पत्थर फेंकने लगी और तो रामचंद्र उसकी दोनों भुजाएं काट दी और लक्ष्मण को बोला कि तुम उसके दोनों कान और नाक के अग्रभाग काट दो। तो लक्ष्मण ने ऐसा किया, रामचंद्र ने भुजा काट दी और लक्ष्मण ने उसके, और वैसे भी लक्ष्मण तो नाक काटने में बहुत प्रख्यात है, शोपन का भी नाक काटेंगे बाद में। तो ऐसे करके वो रामचंद्र सोचे कि भाग जाए तो अच्छा है, चलो स्त्री की हत्या नहीं करनी अपने को। लेकिन उसका बल बढ़ता जा रहा था, उसकी भाव उसके उसके बाहु उनकी भुजाएं नहीं रही, फिर भी उसका बल बढ़ता रहा था, वो कैसे भी करके माया का प्रयोग करके वो युद्ध कर रही थी और सूर्यदेव अस्ताचल को जा रहे थे, सूर्यास्त हो रहा था। उस समय विश्वामित्र ने चेतावनी दी, विश्वामित्र ने बोला कि तुम बिल्कुल दया मत करो उसके ऊपर क्योंकि संध्या समय होने पर सूर्यास्त होने के बाद इसका बल इतना बढ़ जाएगा कि तुम उसको मार नहीं सकोगे, इसलिए वो समय उससे पहले तुम उसको खत्म कर दो अभी। तो रामचंद्र ने विश्वामित्र की बात सुनकर अपने तरकस से एक विशेष पूरा सोने का बना हुआ बाण निकाला और अपनी धनुष की प्रत्यंचा खींची। वो प्रत्यंचा खींचते ही जैसे इतनी जोर से आवाज आई उस प्रत्यंचा की वजह से, तो जैसे ताड़का का हृदय विनीर्ण हो गया, कंपन हो गया उसके, और उसी वो जो सोने का जो बाण था वो ताड़का के छाती में लगा दिया, भेद कर दिया उसकी छाती को। तो वो एक ही बाण लगने से ताड़का वहां जमीन पे गिर गई, उसके प्राण पखेरु उड़ गए, मर गई। ये देखकर देवता लोग बहुत प्रसन्न हो गए क्योंकि देवता लोग तो यज्ञ पर नपते हैं, देवता लोग जो है वो यज्ञ के द्वारा उनका पोषण होता है, तो ये राक्षसी यज्ञ नहीं होने देते, बहुत यज्ञ धर्म में बहुत बाधाएं उपस्थित करते रहते। तो ताड़का के बल से देवता लोग बहुत प्रसन्न हुए और देवराज इंद्र और सब दूसरे देवता भाई एकत्रित होकर राम लक्ष्मण और विश्वामित्र के ऊपर पुष्पवृष्टि करने लगे, उनकी स्तुति करने लगे। गंधर्व आकर बहुत सुंदर सुंदर स्तुति करने लगे रामचंद्र की, अप्सराएं वहां आकर नृत्य करने लगी, तो वहां आकाश में ही जैसे महोत्सव हो गया। तो इस प्रकार से श्री रामचंद्र ने ताड़का का वध किया। तो ये छोटी सी लीला है, ऐसे अनेक लीला। फिर रामचंद्र आगे बढ़ते हैं, मारीच और सुबाहु के साथ भी युद्ध होता है, ये सब अरण्य कांड में, अरण्य कांड की शुरुआत में ही ये कथा थी। तो ठीक है, ये प्रवचन यहां समाप्त करता हूं मैं। तो मेरा आपसे निवेदन है कि हमारे पास वहां एक बुक टेबल लगा हुआ है आपके पीछे, उसमें उसके ऊपर वाल्मीकि रामायण भी रखा हुआ है। प्रभु जी है ना आपके पास वाल्मीकि रामायण, वहां मराठी में है वाल्मीकि रामायण, हमारे पास मराठी हिंदी इंग्लिश जो भाषा आपको समझ में आती है वाल्मीकि रामायण आपको संक्षेप में मिलेगा, बहुत ही सुंदर है, कुछ 570 पेजेस में हमारे गुरुदेव ने बहुत ही बढ़िया वाल्मीकि रामायण का संक्षेप में वर्णन किया है, बहुत पढ़ने में एकदम सरल है और आप इसको नियमित रूप से पढ़ेंगे तो उसमें फलश्रुति दी है, वचन दिया है वाल्मीकि ने कि जो भी मनुष्य रामायण का नियमित रूप से पाठ करेगा, श्रवण करेगा, वो निश्चित रूप से इहलोक और परलोक में सब प्रकार के सुख पाएगा। वाल्मीकि रामायण के भौतिक सुख के लिए भी प्रॉमिस दी है, लेकिन वैष्णव लोग उसमें ज्यादा अपना मन नहीं लगाते हैं। वाल्मीकि रामायण का पाठ करने से, श्रवण करने से भौतिक और आध्यात्मिक दोनों प्रकार के सुख मिलते हैं, लेकिन हम वैष्णव लोगों को एक ही उद्देश्य है जीवन में कि भगवान के धाम में प्रवेश करना इस मृत्यु के बाद, इस जन्म के बाद। तो वाल्मीकि जी वहां वचन देते हैं कि जो मनुष्य इसको नियमित रूप से पाठ करेगा, श्रवण करेगा, वो रामचंद्र के अयोध्या में प्रवेश करेगा और विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होगा। तो ये कोई झूठी प्रॉमिस नहीं है, वाल्मीकि कोई झूठे आदमी नहीं थे कलयुग के कि ऐसे लोगों को थोड़ा खिलवाड़ करने के लिए ऐसी फॉल्स प्रॉमिस दे दी। नहीं, वो जो बोलते हैं ऐसे ही होता है, पॉलिटिशियन नहीं है वाल्मीकि, एक परफेक्ट उदाहरण दिया है। ये पॉलिटिशियन नहीं है वाल्मीकि कि लोगों को गलत गलत वोट के लिए प्रॉमिस देते हैं और फिर कभी पूरी नहीं करते हैं, ऐसा नहीं है वाल्मीकि। उन्होंने प्रॉमिस दिए तो वो जरूर होगा, उसको श्रद्धा से नियमित रूप से श्रवण करेंगे, पाठ करेंगे तो हम भगवान के धाम में प्रवेश करेंगे, रामचंद्र का धाम हमें प्राप्त होगा और वहां से फिर पुनर्जन्म नहीं होता है, भगवान के संग में हम सदा के लिए सुखी हो सकते हैं। हरे कृष्ण।